الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگو ہر جمعہ کو آپ لوگ جلدی آ جاتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ آنے کی اور بیٹھنے کی اللہ توفیق نصیب ہو انسان جب اللہ کے لیے آتا ہے اور اللہ کے لیے سنتا ہے تو یقیناً اللہ اس کے دل کو بدل دے گا اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے کوئی بھی عمل چاہے تم لاکھوں کروڑوں ملینوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو لیکن if you don't have sincerity if you don't have اخلاص in your عبادت وہ قبول ہونے والا نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ ہم تم کو جانور کے یعنی گائے بکری اور اونٹنی کے پیٹ سے دودھ پلاتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبن خالص اور دودھ بھی کہاں سے نکلتا ہے جہاں سے دودھ نکلتا ہے وہاں پر خون بھی ہے اللہ کہہ رہے ہیں خون بھی ہے جانور کے اندر there is a blood there اور یورین بھی ہے کھاؤ ڈنگ بھی ہے گوبر بھی ہے وہاں اور ممبئی فرسنگ ودم اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جانتا اللہ سب کچھ جانتا ہے فرمایا ممبئی فرسنگ ودم دم کے معنی بلڈ فرس کے معنی یورین اور کاؤ ڈنگ وہاں سے کیا نکالتا اللہ کے کہہ رہا ہے لبن خالص پیور ملک سائغاً للشاربین پینے والے کو مزہ آتا ہے کتنی اچھی چیز ہے دودھ پیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے والے کو کہا دعا کر کے پی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ عجیب ڈرنک ہے یہ کھانے کے طور پر بھی پیا جاتا ہے اور پینے کے طور پر بھی پیا جاتا ہے لیکن اس آیت سے ایک سبق حاصل کرو इबारतुन नस से भी यानी कुरान की आयत से भी सबक निकलता है, और इशारे से भी कि अल्लाह इस आयत में क्या इशारा करता है मुझे और आपको, सिर्फ दूध पीने का नहीं। एक इशारा यह है कि तुम मुझे अकेला खालिक मानो और किसी को नहीं, है कोई दुनिया में ऐसी जात मेरे अलावा कि जो दूध और गोबर के दरमियान से दूध निकाल दे, खून और गोबर के दरमियान से दूध निकाले, है कोई ऐसी जात? कोई नहीं, एक अल्लाह है। तो मेरी तौहीद का इकरार करो। इस आयत से अल्लाह तौहीद बयान कर रहा है और इशारा यह कर रहे हैं कि देखो तुम जब दूध निकालते हो तो उसमें खून का एक कतरा भी नहीं होता। तो बड़े पुराने लोग जानते हैं, उनके मां बाप ने निकाला भैंस से गाय से, जब निकालते हैं तो प्योर दूध लेकर आती है अम्मी घर में, वहीं पर बाज तो पी लेते हैं, उसमें एक खून का एक कतरा नहीं, खून का एक कतरा नहीं, गोबर का, काउडंग का एक कतरा नहीं, यूरिन का एक कतरा नहीं। मैंने तुमको प्योर दूध दिया है, सुन लो, मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, अल्लाह कह रहे हैं कयामत के दिन तुम मेरे पास आओगे अमाल को लेकर, ईमान को लेकर, जी दुनिया की बहुत सारी नेकियों को लेकर, अगर उसके अंदर जर्रा बराबर रियाकारी का कतरा होगा, शिर्क का कतरा होगा खून की तरह और इसी तरह पेशाब की तरह, तो जिस तरह तुम्हारे ग्लास में अगर खून गिर जाए भैंस का या गाय का, तुम उस दूध को फेंक दोगे, पियोगे नहीं, उसमें अगर यूरिन निकल गया तो उसको फेंक दोगे। फरमाया तुम ईमान लेकर कयामत के दिन मेरे पास आओगे, अल्लाह कुरान के अंदर इशारा करे मेरे पास आओगे, और तुम्हारे ईमान में कोई शिर्क है, तुम्हारे आमाल में कोई रियाकारी है, अगर इखलास नहीं है तो जिस तरह तुम दूध के गिलास को फेंक दोगे मैं तुम्हारे आमाल को ऐसे ही फेंक दूंगा, कबूल नहीं करूंगा। यह सबक इस आयत से हमें मिलता है। वी लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस आयत। सिंसियरिटी इज सो इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर मैं कोई काम रियाकारी के लिए कर रहा हूं, रियाकारी का क्या माना, किसी को दिखाने के लिए, कोई भी काम किसी को दिखाने के लिए, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं या कुरान की तिलावत कर रहा हूं किसी को दिखाने के लिए, तो क्या मालूम वो मुझे देखता है भी कि नहीं, क्या मालूम मुझे देख रहा है कि नहीं। हम तो माशाल्लाह उसको दिखाने के लिए मशगूल है, लेकिन वो मुझे देख रहा है, मुझे क्या मालूम। चलो अगर उसने देख भी लिया तो क्या मालूम वो मेरे अमल से खुश भी होगा कि नहीं, इज गोइंग टू प्लीज हैप्पी हो ना, हमें पता नहीं। चलो अगर खुश भी हो गया वो कितनी देर के लिए खुश रहेगा, बहुत बहुत तो वाह वाह माशाल्लाह तारीफ कर देगा, तो खुश हो भी गया तो तुम्हें कोई इनाम देगा, कितना इनाम देगा, पहले तो देते ही नहीं, देते ही नहीं। हमारे एक बच्चा हाफिज हुआ था तो मुफ्ती सईद पालनपुर सेकुलरी दालून के, उन्होंने पूछा बच्चे क्या दिया इन्होंने इनाम में, कहा इन्होंने मुझे ये पॉकेट वाला कुरान दिया। क्या दिया? पॉकेट वाला कुरान। तो हजरत ने फरमाया कुरान तो तेरे सीने में है, फिर कुरान क्यों दिया? कुरान तो तू हाफिज ही बन गया ना, यू बिकेम हाफिज नाउ ऑलरेडी, कुरान नॉट इन द हैंड, इन योर चेस्ट, इन योर हार्ट, तो कुछ और देना चाहिए जिससे बच्चा खुश हो जाता। पहली बात तो देते ही नहीं, देंगे कितना देंगे, 5 पाउंड 10 पाउंड 15 पाउंड खुश होकर कि यार ले लो भाई देवे तब, लेकिन उसके देखने भी हमें शक, उसके खुश होने में भी हमें शक, उसके देने में भी हमें शक, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो हर वक्त देख रहा है, हर वक्त क्या है देख रहा है, इज वॉचिंग एट यू एवरी टाइम, वट एवर अमल यू डू, जो भी काम करो वो देख रहा है। अगर वो देख रहा है, जाहिरी बात है अल्लाह ने कुरान में कहा वहुवा माअकुम अइनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम हो, कुरान में अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह इज विथ यू वेयर यू आर, तुम्हारे साथ है। अच्छा जब देख रहा है तो यकीनन अगर तुम अल्लाह के लिए करोगे तो अल्लाह क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। और मेरी खुशी और अल्लाह की खुशी में कितना बड़ा फर्क है। जब अल्लाह का, अल्लाह के लिए अल्लाह का अमल करोगे तो तो अल्लाह खुश हो जाएगा, इतना खुश होगा, वो इतना देगा, इतना देगा जिसके देने की कोई एंड नहीं। कोई दुनिया वाला देगा तो पूरी जिंदगी चलने वाला नहीं, अल्लाह जब देगा जिंदगी चलेगा, कब्र में काम आएगा, कयामत में काम आएगा और जन्नत में आला दर्जात अल्लाह ता फरमाएगा। हमारे हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे आखिरी शेख थे, 7 साल तक उनसे बैत रहा। एक मरतबा सफर में हजरत ने कहा, बताओ अगर कोई आदमी इखलास के साथ इबादत कर रहा है, इखलास के सिंसियरिटी के साथ इबादत कर रहा है, इबादत के दरमियान में रियाकारी पैदा हो गई, ड्यूरिंग द इबादत शो ऑफ स्टार्टेड, ड्यूरिंग नहीं, पहले तो वो बात नहीं करते थे, कुरान ही पढ़ते सफर में, कभी कभी पूछ लेते थे, बताओ, सवाल करते थे हमसे कि अगर एक आदमी इखलास के साथ कोई अमल कर रहा है और अमल के दरमियान में रियाकारी शुरू हो गई, कोई आ गया सामने बैठ गया इधर उधर, तो उसको दिखाने के लिए फिर नमाज आधी जरा शो ऑफ कर दी, या कुरान पढ़ रहा था जब कोई आ गया तो माशाल्लाह और चून के साथ लिमोडियन वॉइस के साथ पढ़ना शुरू कर दिया उसने, तो फिर अब रियाकारी शुरू हो गई, तो क्या उसको क्या हुक्म है उसकी इबादत का? हजरत ने सवाल किया, हमने कहा हजरत आप ही बताइए। हजरत ने फिर जवाब दिया, इबादत की दो किस्म है, एक इबादत है एक आमाल मुसलसल और एक आमाल गैर मुसलसल। क्या मतलब इसका? आमाल मुसलसल मीनिंग कंटिन्यूस अमल, जैसे नमाज अल्लाहु अकबर कंटिन्यूस है, कब तक? सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, इन बिटवीन स्टॉप नहीं है, इसको कहते हैं आमाल मुसलसल, कंटिन्यूस अमल है। और दूसरा है गैर मुसलसल, क्या कहते हैं इसको? जैसे कुरान तिलावत है, मैं बैठे बैठे कुरान पढ़ रहा हूं, अगर मैं इसको बंद करना चाहूं तो बंद करके बात भी कर सकता हूं, जिक्र कर रहा हूं, अभी मैं आपसे बयान भी कर रहा हूं, दरमियान में स्टॉप भी कर सकता हूं, यह है गैर मुसलसल, कंटिन्यूस नहीं है। और मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझते हैं? कि ये मेरा उर्दू मुश्किल है, बीच में इसीलिए थोड़ा इंग्लिश को घुसाता हूं, ताकि बात समझ में आ जाए। तो ये जैसे कुरान तिलावत, जैसे दर्स, जैसे बयान, जैसे कुछ भी जिक्रुल्लाह, तो अब क्या जवाब होगा? कबूल होगा अगर दरमियान में रियाकारी? फरमाया जो अमल मुसलसल कंटिन्यूस है उसमें देखा जाएगा तेरा इखलास ज्यादा है या तेरा शौक ज्यादा है, यह देखा जाएगा कि तूने 3 रकात इखलास वाली पढ़ ली और 1 रकात में शौक कर लिया तो उसमें इखलास ज्यादा है, कबूल हो गई। लेकिन अगर 1 रकात इखलास वाली हो गई, 3 रकात 2 रकात शौक वाली हो गई, तो अल्लाह की यह नमाज कबूल नहीं है, उसमें गलबा को देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा कौन सी चीज ज्यादा है, इज द इखलास सिंसियरिटी और द शौक। और जो अमल मुसलसल नहीं है, मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ना शुरू किया, अब कोई आ गया तो फिर मैंने दिखाना भी शुरू किया, तो जब तक पढ़ा है इखलास के साथ वहां तक तो कबूल है, जब से तुमने शो ऑफ करना शुरू किया वहां से कबूल नहीं है। और फिर फरमाया सुनो सिराज मियां, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरी 40 साल की बुखारी शरीफ का खुलासा है। क्या फरमाया? 40 साल की बुखारी शरीफ की खुलासा है, इसीलिए आगे कह रहे हैं कि यही खुलासा है इमाम बुखारी की पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, खुलासा है पूरी बुखारी का। इमाम बुखारी का इखलास कितना बड़ा कि हर हदीस को 2 रकात गुसल, 2 रकात और हदीस को इस्तिखारा करके लिखा है, 7,000 मरतबा इन्होंने 2-2 रकात और 7,000 गुसल किए तब जाकर हदीस बुखारी लिखी है। बात समझ आ रही है? उनका इखलास, फिर भी इन्होंने पहली हदीस लिखी इन नमल अमाल, ताकि मेरी पूरी किताब अल्लाह मुझे इखलास से लिखने वाली बना दे, और कयामत तक जो मेरी किताब पढ़ेंगे वो पहले हदीस पढ़ेंगे तो पढ़ाते वक्त उनके अंदर में इखलास पैदा हो जाए, यही दर्स है। अगर मुझे कोई मुफ्ती कह दे, अल्लामा कह दे, शेखुल हदीस कह दे, बड़ा वली कह दे, उससे क्या होगा जब तक अल्लाह की निगाह में मेरा अमल मकबूल न हो? लोगों के कहने से, मेरे फूल जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5 मिनट के लिए मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की निगाह में अगर वो अमल मर्दून है तो फेंक दिया जाएगा, उस दूध की तरह जिसमें खून का कतरा हो या काउडंग हो या उसके अंदर में कुछ गिरा हो, हम उसको फेंक देते हैं। अल्लाह कह रहे कयामत के दिन ऐसे ही फेंक दूंगा, वो मेरी बात समझ रहे। इसलिए हर वक्त जब भी मजलिस में बैठे, चाहे दर्श हो, चाहे बयान हो, चाहे कोई अमल कर रहे हो, हर वक्त अल्लाह से मांगे। मुझे याद पड़ता है हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा फरमाया, मौलाना जाजी साहब भी वहां थे, अजीब बात, हजरत जी मौलाना इनामुल साहब को कई मर्तबा हमने देखा है माशाल्लाह। हजरत ने एक मर्तबा फरमाया, बताओ अगर कोई आदमी यानी जमात जा रही, जमात तबलीग की जमात, 10 आदमी की एक तबलीग दावत और तबलीग की जमात निकल रही है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, और मैं बिजी हूं, यानी मेरे पास अभी मैं दर्स, मुझे मदरसा पढ़ाना है, या मुझे और कोई जरूरी, या मैं बीमार हूं, माजूर हूं, जा नहीं सकता। हजरत ने फरमाया, तुम उस जमात के लिए जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं मोहब्बत की निगाह से देखकर उनके लिए इखलास के साथ दुआ कर दें, अल्लाह इस जमात का जाना और उसके दावत और तबलीग के काम को कबूल फरमा ले, तो तुम्हारी दुआ की, इखलास वाली दुआ की वजह से वो 3 महीना जमात में गए हैं, इतना ही सवाब अल्लाह तुम्हें भी इखलास वाली दुआ से अता फरमाएंगे। और उस वक्त हजरत ने हसन साहब ने दलील बयान की, बगैर दलील के बात नहीं होती, दलील के साथ बयान किया, फरमाया गज़वे तबूक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ जा रहे थे अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, गज़वे बैटल ऑफ तबूक में, और रास्ते में सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबाओ तुम्हारा क्या ख्याल है उन सहाबा के बारे में, जैसे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ब्लाइंड है, वो नहीं आ सके, कुछ बीमार है, कुछ माजूर है, कुछ कुछ किसी को कुछ बहुत जरूरी काम है, वो नहीं आ सके, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फरमाया अल्लाह हमें ज्यादा सवाब देगा इसलिए कि हम अल्लाह के रास्ते में निकले। फरमाया जो वो माजूर है, वो माजूर है, तुम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हो, उनके दिल में भी है कि अगर हम अच्छे होते तो हम भी दावत और तबलीग में जाते, लेकिन माजूर है, तो तुम्हारे एक एक कदम पर तुमको जितना सवाब मिलता है उनको भी घर पर बैठे इतना ही सवाब मिलेगा। इखलास है, क्या कह रहा हूं मैं, इखलास के साथ दुआ, न कि जमात जा रहे हैं ऐसे निकल रहे हैं, नहीं, दुआ करो उनके लिए, अल्लाह उनको कामयाबी दे, जहां कहीं जाएं, जिस मस्जिद में जाएं, वहां अल्लाह उनके हाथों से हिदायत के फैसले फरमाए। इसीलिए हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जब हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार थे आखिरी उम्र में, वह सो सिक, बहुत बीमार थे, तो इयादत के लिए गए, अल्लाह हमें मुसलमानों की इयादत की तौफीक नसीब फरमाए, हाँ किसी मोमिन मुस्लिम की इयादत कर ले, वहां जाकर न जा सके तो फोन से कर ले। फरमाया वो तुम्हारा चलना वो उस इयादत की तरफ नहीं है, जन्नत की तरफ है। हाँ, और सुबह में तुमने किसी मुसलमान की खबर पूछ ली बीमार को, शाम तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। हम तो इंतजार में रहते हैं, हम तो गुनहगार हैं, हमारी दुआ कहां कबूल होगी, लेकिन फरिश्ते तो इनसेंट मासूम होते हैं, उनकी दुआ तो अल्लाह कबूल कर लेता है, वो मेरे और आपके लिए और तिमार पुर्सी करने वाले के लिए दुआ करते हैं मॉर्निंग से इवनिंग। और अगर शाम में किसी की खबर ले ली आपने, भाई हजरत आप बीमार हो, अल्लाह आपको शिफा दे, 2-4 कलिमात उसको दुआ के दे दिए, तो क्या होगा, आपके लिए शाम से लेकर सुबह तक फरिश्ते 70,000 दुआ कर रहे हैं। मेरे 2 कलमे पर 70,000 फरिश्ते दुआ करें, कितना बड़ा इनाम है। इसीलिए फरमाया बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है, याद रखो ये बात हदीस में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं द सिक पर्सन्स दुआ इज लाइक ए दुआ ऑफ द एंजल। रिमेंबर व्हेन द सिक पर्सन मेक दुआ फॉर यू, तो हमें जा करके उनके लिए दुआ करनी चाहिए और उनको भी दुआ की दरखास्त करनी चाहिए। बीमार है उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है, इसलिए कि बीमारी तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह उसके गुनाहों को वैसे ही खत्म कर देता है। तो हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बीमार पुर्सी के लिए हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे दिल्ली पहुंचे, तो बात अब जब जाने की तैयारी थी मुफ्ती शफी साहब की वापसी के लिए, तो बुलाया मुफ्ती साहब इधर आओ, एक मसला है बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूमता रहता है, बहुत परेशान हूं मैं। उस मसले को मेरे लिए हल कर दो। फरमा हजरत क्या मसला है? कहा मेरा यह दावत और तबलीग का काम जो है, दावत और तबलीग का काम कहीं इस्तिदराज तो नहीं है? इस्तिदराज का क्या माना? अल्लाह की तरफ से ढील, ये तो नहीं है? बहुत ही परेशान हूं मैं, बताइए आप। हमारे औलिया किराम और अकाबरीन को हर अमल पर डर रहता था, खौफ, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा बाज मरतबा अगर हमने कोई रियाकारी वाला अमल किया तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के सारे अमल को डिलीट कर देंगे, खत्म, एक भी बाकी नहीं। लायशऊरून, और कुरान में अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें एहसास तक नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह फरमाया नहीं हजरत, आपका काम दावत और तबलीग का अल्लाह के यहां बहुत मकबूल है, आपका दावत और तबलीग का काम अल्लाह के यहां बहुत मकबूल है। अगर मुझे कोई ऐसा कहता तो मैं तो भूल जाता, आहा मेरा काम बड़ा मकबूल है, भूल जाता ना। अगर मुझे कोई कहे माशाल्लाह तो मैं तो बहुत खुश हो जाता, बहुत मकबूल है, फुला नहीं समाता। लेकिन ये तो अल्लाह वाले थे, इतनी बात पर उनको इनफ नहीं था, बस नहीं था। कहा दलील क्या है? व्हाट इज अ दलील, व्हाट इज अ प्रूफ दैट माय वर्क इज एक्सेप्टेड बाय अल्लाह, क्या दलील है? फरमाया मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो तो बड़े मुफ्ती थे ना, अल्लाह पाक ने उनको चुना था। फरमाया सुनो, अगर इस्तिदराज होता है तो उनके दिल में कभी अल्लाह का खौफ नहीं आता। जिनके अमल के बाद उनके दिल में अल्लाह का खौफ आता है, यकीनन वो अमल अल्लाह के यहां मकबूल है। आपके दिल में यह खतरा पैदा था, मालूम होता आपका अमल अल्लाह के यहां मकबूल है। तो मैं कह रहा था कि हम इखलास के साथ कोई भी अमल करें, कोई भी अमल, अल्लाह पाक ने हमारे लिए, मेरे लिए और आपको सबसे बड़ा मोजिजा, अल्लाह रिमेन दिस मोजिजा ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर अस एंड इज गोइंग टू रिमेन दिस मोजिजा अंटिल द डे ऑफ रिजरेक्शन। उस मोजिजे को क्या कहते हैं हम? कुराने करीम, ये जिंदा अलाइव मिरेकल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा मिन अल-अंबियाई नबीयुन इल्ला कद उतिया, मा मिन अल-अंबियाई नबीयुन इल्ला कद उतिया मिन अल-आयाती मा मिसलुहु आमन अलैहिल बशर व इन्नमा कान अल्लज़ी उतीतु वहयन औहल्लाहु इलैहि अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिअन यौम अल-क़ियामा। हर नबी को अल्लाह ने मोजिजा दिया है ना, हर नबी को अल्लाह ने मोजिजा दिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को मिरेकल दिया, मिरेकल ऑफ स्टिक ऐसा दिया, मिरेकल ऑफ यद बेजा, ऐसा हाथ निकालते थे वो शाइनिंग लाइक 14 मून लाइक ए सन, इतना शाइन करता था, मोजिजा दिया। हजरत ईसा ने सलाम को अगर कोई आदमी ब्लाइंड है वैसा करते थे तो अल्लाह उसको आईसाइट दे देते थे, और अगर किसी को एल्बिनो की बीमारी होती थी ऐसे हाथ फेरते थे तो उनकी कोड़ी का मरज खत्म हो जाता था। कोई मुर्दा है उसको कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाते थे। हर नबी को मोजिजा दिया, और मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजिजा दिए। कैसे कैसे मोजिजा दिए? अल्लाहु अकबर, फरमाया अभी तक मुझे याद है मक्का मुकर्रमा की कंकड़ियों ने मुझसे सलाम किया है, मक्का मुकर्रमा के पत्थरों ने आगे बढ़कर मुझसे सलाम किया है, एक प्याला है पानी नहीं है, अल्लाह के नबी ने हाथ डाला ऐसे और पानी आपकी उंगलियों से निकलने लगा, सारे सहाबा ने उस पानी को पिया है। और इसी तरह एक औरत जा रही थी, उसकी उठनी के ऊपर दो पानी के मशकीजे थे, जिसको कहते हैं वाटर बैग थी दो, और पूछा क्या है ये? कहा पानी है। कहा मेरे सारे सहाबा प्यासे हैं, तुम इधर आओ। ऊपर से मटके को बंद कर दिया और नीचे से टैप सुराख लगा दिया, कहा सहाबाओ पानी पियो। सारे सहाबा ने पानी पिया, अपने अपने जानवरों को पिलाया,
बाद में सबने पी लिया, पानी को भर लिया, अभी तक उन मटकों में पानी इतना ही बाकी है। मौजिजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जाबिर रजी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरी 9 बहनें हैं एंड यहूदियों के पास मेरे बाप को बहुत ज्यादा कर्जा पे करना था। सारे यहूदी आ गए, कहा लाओ हमारा कर्जा। तो मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, को अल्लाह के नबी इतना खजूर तो आए नहीं इस साल में, मैं कैसे कर्जा अदा करूंगा। तो अल्लाह के नबी कहता जाबिर आई एम कमिंग विद यू। वहां पर आए तो उन्होंने ऐसे हदीस के अल्फाज है घोर घोर देख रहे थे, ए जाबिर तू यूं समझता है कि तू नबी को ले आया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं नहीं हमें हमारा कर्जा दो। अल्लाह के नबी ने देखा हां ये लोग तकब्बुर में ऐसा कह रहे हैं, वो जो खजूर का ढेर रखा हुआ यहां वहां वहां खजूर का ढेर, अल्लाह के नबी ने एक ढेर की तरफ चक्कर लगाया, फरमाया जाबिर मैं यहां बैठता हूं इस खजूर में से दो। वो ढेर खत्म नहीं हुआ और सबका कर्जा अदा हो गया, वो ढेर खत्म नहीं हुआ, इतना ही है और सबका कर्जा अदा हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह के नबी के मौजिजात दो किस्म के थे, बहुत से लोगों को पता नहीं, एक कौली मौजिजा और फैली मौजिजा जबान से। एक मर्तबा एक देहाती की इयादत के लिए गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको जाकर कहा लाबासत तहूर इंशाअल्लाह लाबासत तहूर, ये किसी की बीमार पुरसी के लिए जाओ ये दुआ पढ़ा करो, हदीस साबित है लाबासत तहूर इंशाअल्लाह। उस देहाती ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बुखार ऐसा खतरनाक है कि जवान को लगे तो बूढ़ा हो जाए, बूढ़े को लगे तो मर जाए, और आप कह रहे लाबासत तहूर इंशाअल्लाह। फरमाया अल्लाह के नबी ने चलो ऐसा ही होगा अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। कुछ घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। अगर वो आमीन कहता तो अल्लाह के नबी का मौजिजा जाहिर हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसको फिट्स की बीमारी थी, फिट्स की बीमारी आई, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे फिट्स की बीमारी खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू चाहे तो मैं दुआ कर दूं कि तेरी बीमारी खत्म हो जाए, और तू चाहे तो ये बीमारी बाकी रहे, तू सबर कर अल्लाह तुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उस औरत ने कहा अल्लाह के नबी आप गवाही देते हो कि मुझे जन्नत मिलेगी? फरमाया हाँ, मैं और आप होते तो बीमारी भी अच्छी हो जाए जन्नत भी मिल जाए, ऐसा ही कहते ना। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्या कह रहे हैं सबर, चूंकि वो अल्लाह के नबी की सोहबत याफ्ता होती थी, हाँ कंपनी बैठ अल्लाह वालों के पास बैठते थे और उनका जहन बना हुआ था। फरमा अल्लाह मैं सबर करूंगी सबर करूंगी। फरमा मैं गवाही देता हूं अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। कहा अल्लाह के नबी एक काम कर दो, मुझे जब फिक्स आती है ना मुझे पता नहीं चलता, कभी रोड पर कभी रास्ते में कभी बाहर, तो मेरे कपड़े खुल जाते हैं, एक दुआ कर दीजिए फिट्स के अंदर मेरे कपड़े न खुले। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, उसके बाद जब तक उसकी मौत हुई वहां तक कभी उसके बदन से कपड़े नहीं हटे। ये दुआ थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बैहकी ने दलाइल नबुवा में और बहुत सारी किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजार से ज्यादा मोर देन थाउजेंड्स मिरेकल आर मेंशन इन द बुक बैहकी दलाइल नबुवा, और फरमाया ये तो मेरे तजुर्बे से है मेरे एक्सपीरियंस में, वरना अल्लाह के नबी के मौजिजात उससे भी ज्यादा है। और उससे बड़ा सबसे बड़ा मौजिजा अल्लाह के सारे नबी दुनिया से चले गए, उनका मौजिजा मिरेकल ऑल्सो वेंट विद देम, दे वेंट अवे फ्रॉम दिस दुनिया, द मिरेकल ऑल्सो गोन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मौजिजात खत्म हुए लेकिन अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, एक मिरेकल पीछे छोड़ कर गए, और वो मिरेकल क्या है भाई? कुरान करीम है। हाँ कुरान करीम है जिसको अल्लाह कह रहे हैं लो अनज़लना हाज़ल कुरान, हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम। ये कुरान तुम्हारे पास है ना, अगर इसको अल्लाह क्या कह, अल्लाह कह रहे हैं मैं इसको माउंटेन पर रखता तो माउंटेन इसके बोझ और हैवीनेस को उठा नहीं सकता, माउंटेन क्रैक हो जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। ए इंसान इतना बड़ा मौजिजा मैंने तुझे दिया है, अगर तू उस पर अमल कर ले उसको पढ़ता रहे तू मेरे साथ, कह रहे अगर तू चाहता है कि मैं तू मुझसे बात करे नमाज में खड़ा हो जा, अगर तू चाहता है मैं तुझसे बात करूं कुरान खोल, अल्लाह तुझसे बात कर रहा है, अल्लाह तुझसे बात कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों कुरान की आखिरी आयत कह देता हूं अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, ये तो सही तर्जमा है, लेकिन अल्लामा रूहुल मानी ने इसका एक और तफसीर बयान फरमाई, अदर सेकंड फरमाया यहां यशा की जमीर को लौटाओ मन की तरफ, जो आदमी चाहता है कि अल्लाह मेरा हो जाए तो अल्लाह उसको अपना बना देता है। हम अगर चाहे मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, तुम चाहो मैं कुरान पढ़ूंगा तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, तुम कोशिश करो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें सच्चा इखलास नसीब फरमाए और इखलास वाले अमाल नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। बात तो खत्म नहीं, अभी तो मशीन गर्म हुआ, बात तो आगे बहुत लंबी चौड़ी है इखलास के ऊपर और कुरान के ऊपर। असल बात हमें क्या है, हम इस्तिग़फ़ार को छोड़ चुके हैं, हम नबी की सुन्नतों को छोड़ चुके हैं, इसलिए फ्लड्स हैं, इसलिए जलजले हैं, इसलिए बीमारियां हैं, इसलिए परेशानियां हैं। तो दो चीज़ों को लाजिम पकड़ो, आज का मेरा लेसन है दो चीज़, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और दूसरी चीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस द सुन्नत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तिग़फ़ार, ये दोनों कुरान से साबित है इंशाअल्लाह। आइंदा जिंदगी बाकी रही इस पर बात करेंगे, इस्तिग़फ़ार क्या चीज़ है और ये सुन्नत नबी क्या है इंशाअल्लाह। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।